الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس میں اور درس کے اندر ہم حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ایمان اور کفر، قرآن کی، قرآن مجید کی روشنی میں اس میں سے پڑھتے ہیں، اور آخری درس میں ہم نے صفحہ نمبر 23 تک پڑھ لیا تھا، جس میں کہ حضرت نے تین بڑی اہم جو ہیں وہ ٹرمینالوجیز ڈیفائن کری تھیں، اصطلاحات شرعیہ کون کون سی تھیں، ثبوت قطعی کیا چیز ہوتی ہے، قطعی ثبوت، ٹھیک ہے، انگریزی میں اگر اس کو کہیں تو شاید ایبسلیوٹ کا لفظ بنے گا، قطعی یا بالکل ڈٹرمنسٹک، 100% کنفرم، تو ایسا ثبوت، ایسی دلیل، ایسی ایویڈنس، تو یہ پہلی چیز تھی ثبوت قطعی. پھر اس کے بعد ثبوت بدیہی، بدیہی بداہتن سے نکلا، اور یعنی کوئی چیز جو کہ بالکل ہی کلیئر ہو، آبویس ہو، اپیرنٹ ہو، صاف ظاہر ہو، تو ایسا ثبوت ثبوت بدیہی کہلاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ضروریات دین، ٹھیک ہے، تو ضروریات دین جو چیزیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بذریعہ تواتر اس درجے شہرت و بداہت کے ساتھ ثابت ہوں کہ ہر خاص و عام اس سے باخبر ہو، ان کو فقہا اور متقدمین کی اصطلاح میں ضروریات دین کہا جاتا ہے. تو یہ تین اصطلاحات پڑھنے کے بعد اب ہم اگلے باب کو شروع کرتے ہیں. آج صفحہ نمبر 24 کے اوپر ہے، کفر اور کافر کی اقسام، ٹھیک ہے. تو اقسام کیسے بنی وہ بھی پچھلے پیراگراف کے اندر تھا کہ ایمان بہت سی مجموعی چیزوں کی تصدیق و تسلیم کا نام ہے، جن کا ذکر اوپر تعریف میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کفر میں ان سب چیزوں کا انکار یا تکذیب ضروری نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کسی ایک چیز کی تکذیب و انکار بھی کفر ہے، خواہ باقی سب چیزوں کو صدق دل سے قبول کرتا ہو، ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہو تو وہ کفر بن جاتا ہے. اسی لیے ایمان اور اسلام ایک ہی حقیقت ہے، اور کفر کی بہت سی اقسام ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. ایمان کو جو ہے نا وہ یعنی توڑا نہیں جا سکتا، ساری چیزیں ہوں گی تو ایمان ہوگا، لیکن کفر کو جو ہے نا وہ توڑا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی ایک چیز کا انکار بھی کفر ہے. تو اب وہ کون سی والی چیز کا انکار ہے تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے قسم کا کفر ہے، ٹھیک ہے. ایمان کی قسمیں نہیں ہوتی، ایمان کی صرف اور صرف ایک ہی قسم ہے، ایمان کی صرف اور صرف ایک ہی قسم ہے، ٹھیک ہے. وہ قسم کون سی ہے؟ بس ایک ہی قسم کا ایمان ہوتا ہے. اس کے لیے اگر آپ سے پوچھیں، کلاسز کے اندر پہلے بھی پوچھ چکے ہیں تفسیر کی کلاسز کے اندر، تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا کہ ایمان کی ایک ہی قسم ہے. اب وہ کیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایسا ہو، ٹھیک ہے. کفر کی بہت ساری قسمیں، کفر ایسا ہو تو وہ کفر جو ہے نا وہ شرک کہلائے گا، کفر ایسا ہو تو وہ جو ہے نفاق کہلائے گا، کفر ایسا ہو سوری تو وہ جو ہے وہ الحاد کہلائے گا، کفر ایسا ہو تو وہ فلانا ٹائپ کا کفر کہلائے گا، بہت ساری قسمیں کفر کی. ایمان کی صرف ایک قسم ہے کہ ایسا ہو تو وہ ایمان کہلائے گا، اور وہ ماشاءاللہ صحیح جواب دیا جس نے بھی دیا، ہنانا سینٹر کے نام سے جو لاگ ان ہے، تو انہوں نے جواب دیا ایمان صرف ایک ہی قسم کا ہو تب وہ ایمان ہوگا، ورنہ وہ ایمان نہیں ہوگا. وہ کون سا والا؟ صحابہ والا ایمان، صحابہ والا ایمان. وَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، وَإِنْ آمَنْتُمْ، اگر وہ ایمان لے کے کر کے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت کے اوپر ہیں. اب ہم آج تک یہ سمجھتے رہے कि इसका मतलब ये है कि जब दुश्मन के सामने जिहाद में सहाबा आते थे तो वो जिस तरीके से लड़ जाते थे ना, उस तरीके से तुम मैदान जिहाद में जब लड़ जाओगे दुश्मन से, तब जो है तुम ईमान वाले होगे, राइट? या सहाबा जो है वो जिस तरीके से नमाजें पढ़ा करते थे कि मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا, राइट? ये सहाबा की जो है वो अल्लाह ताला शान बयान फरमाते हैं कि तुम उनको देखते हो रुकअन रुकू करते हुए, सुजदई सजदा करते हुए, यबतगून फजल मिन अल्लाह, अल्लाह का फजल और उसकी रिजवान तलाश करते हुए. तो इसका मतलब यह है कि सहाबा वाले ईमान का मतलब यह है कि हम भी जब तक रुकू हर वक्त नहीं करते रहेंगे और सजदे हर वक्त नहीं करते रहेंगे और अल्लाह ताला का फजल हर वक्त नहीं तलाश करते रहेंगे तो हमारा ईमान जो है वो सहाबा जैसा ईमान नहीं हो सकता. क्या ख्याल है, आप ये समझते थे या कम अज कम क्लासों से पहले समझते थे इस तरीके से कि जब तक हमारा ईमान यानी हमारे आमाल वैसे नहीं होंगे जैसे सहाबा के आमाल थे तब तक हमारा ईमान जो है वो ठीक नहीं होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि हमारे आमाल जो है ना वो सहाबा के आमाल जैसे कभी भी नहीं हो सकते. तो इसका मतलब यह है कि हम काफिर सारे के सारे हमेशा काफिर ही रहेंगे, राइट? तो मतलब क्या है, सहाबा के आमाल नहीं बल्कि सहाबा के अकायद, सहाबा के अकायद. जब तक तुम्हारे अकायद सहाबा के अकायद जैसे नहीं होंगे उस वक्त तक तुम्हारा ईमान नहीं हो सकता, ठीक है? उस वक्त तक तुम ईमान वाले नहीं कहलाओगे. तो ईमान का जो स्टैंडर्ड है ना, ईमान का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, सहाबा का ईमान यानी सहाबा के अकायद, नॉट आमाल. अगर आमाल पे दारो मदार होता हम सारे के सारे गए, एक भी नहीं बचेगा हम में से, ठीक है? तो अकायद, तो अब ईमान की सिर्फ एक ही किस्म है कि कैसा हो, सहाबा जैसा ईमान हो यानी अकायद सहाबा जैसे अकायद हो, ठीक है ना? और जो है वो क्या कहते हैं, कुफर, कुफर बहुत सारे किस्मों के, कादियानी का कुफर अलग है, राइट? और जो है वो परवेजी या क्या नाम था वो परवेज जो था उसका कुफर अलग किस्म का है. आजकल जो है वो नित नए यूट्यूब के ऊपर जो कुफर आ रहे हैं वो सारे अलग अलग किस्मों के हैं, राइट? उसकी तो अनलिमिटेड किस्में हो जाके, अगर कुफर की किस्में बनाने जाए ना तो पता नहीं यानी उसकी फुरुआत जो है वो बेशुमार हो सकती हैं. अच्छा, तो कुफर और काफिर की अकसाम जो अगला चैप्टर है, तो फरमाते हैं कि इस रिसाले का असल मौजू है बहस यही मजमून है, जैसा कि तमहीद में लिखा जा चुका है, यानी हमने इस रिसाला इसी वजह से लिखा है कुफर और काफिर की अकसाम समझाने के लिए, ठीक है? तो मजकूर सदर तफसील में ये मालूम हो चुका है कि कुफर तकजीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाना. झुटलाना तकजीब क्या मतलब होता है इसका, कि कोई शख्स कोई बात कहे और आप कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं वैसा नहीं है, इसको कहते हैं तकजीब करना, ठीक है ना? किजब का मतलब होता है झूठ बोलना, तकजीब का मतलब झूठ बोलना नहीं होता, तकजीब का मतलब ये होता है किसी दूसरे शख्स को झूठा करार देना कि तुम जो कह रहे हो वैसा नहीं है, इसको तकजीब कहते हैं. तो नबी अलैहिस्सलाम की तकजीब करना ये कुफर है. फिर तकजीब की चंद सूरतें हैं और इन सूरतों के इख्तलाफ ही से कुफर की चंद अकसाम बन जाती हैं, जिनको इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने अपनी किताब फैसल फैसल अत्तफरका बैन अल इस्लामी वस जंदका जंदका, ठीक है, यानी किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लिखी के यानी तफर्रका जो है ना वो इस्लाम और जंदका के दरमियान जो है ना वो उसके लिए एक बिल्कुल फैसल यानी बिल्कुल डिसिसिव किस्म की बुक है ये, जिसके अंदर उन्होंने ये सारी चीजें लिखी हैं. नीज अपनी किताब अल इक्तसाद फिल एतिकाद, ठीक है, यानी इक्तसाद फिल एतिकाद, एतिकाद के अंदर इक्तसाद, इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इक्तिसाद का अंग्रेजी में तर्जुमा इकोनॉमिक्स से बनता है, तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं, एतकाद की इकोनॉमिक्स. तो क्या मतलब है इसका, मतलब मियाना रवि, एतदाल का रास्ता, एतदाल का रास्ता एतकाद के अंदर, ना किसी एक्सट्रीम के ऊपर ना दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर, ठीक है? तो ये भी उनकी किताब है उसमें। और हजरत शाह अब्दुल अजीज पदसरहू ने, यानी हजरत शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के जो सबसे बड़े बेटे थे, हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने फतावा में, और इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने आयत इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम, पूरी जो आयत है, अल आया यानी इसके आखिर तक ये जो आयत है, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतुहुम अम लम तुनज़िरहुम ला यूमिनून खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, ये वाली जो सूरह बकरा की इब्तदाई आयत है ना, तो उसकी तफसीर में तफसील के साथ तहरीर फरमाया है। ठीक है, तो तीन हजरात के जो है वो हजरत ने यहाँ पे तहरीरों को रेफर किया है कि इमाम गजाली, इमाम बगवी और हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, कुफर की अकसाम के लिए। नीज इल्म अकायद व कलाम की मुस्तनद कुतुब शरह मवाकिफ शरह मकासिद में भी उनका तफसीली जिक्र है। इन अकसाम तकजीब का खुलासा ये है। ठीक है, यानी कुफर की जो अकसाम है ना, इनका खुलासा हजरत बड़े आसान अल्फाज के अंदर उर्दू में बयान फरमाते हैं। नंबर एक, एक तकजीब की सूरत तो ये है कि कोई शख्स सराहतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का रसूल ही तस्लीम ना करे, जैसे बुत परस्त, यहूद और नसारा। ठीक है, ये सराहतन बिल्कुल क्लियर कहते हैं, भाई आप अल्लाह के रसूल नाउज बिल्ला हैं ही नहीं। ठीक है ना, अगर रसूल होते तो फिर जो है वो हम आपकी सारी बात मान लेते, लेकिन हम तो आपको रसूल ही नहीं मानते। ठीक है, तो जैसे कि वो सुलह हुदैबिया में वो जो सुहेल उस वक्त जो है वो मुशरिक थे, ठीक है, तो वो कुफार मक्का की तरफ से जो है ना वो सुलह हुदैबिया की शराइत तय करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के पास आए थे, तो जब सुलह की शराइत लिखने का वक्त आया तो वो इबारत लिखने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, हाँ अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि भाई तुम लिखो, मुझे तो लिखना नहीं आता तो तुम लिखो। तो उसमें ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये वाली शराइत है, या ये उन दोनों के दरमियान ये शराइत तय हुई है। तो उसी के ऊपर सुहेल ने जो है ना वो बिल्कुल पहली लाइन के ऊपर ही रोक दिया। उसने कहा कि भाई रसूलुल्लाह, ये तो एग्रीमेंट हमारे और आपके दरमियान हो रहा है ना, तो मैंने भी इसके ऊपर साइन करना है, मैं तो आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं हूं। तो इस लफ्ज को निकाले इसके अंदर से, मोहम्मद और रसूलुल्लाह के लफ्ज को जो है मैं उसके ऊपर अपनी तौसीख नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको रसूलुल्लाह मानता ही नहीं। अगर मैं आपको रसूलुल्लाह मान लेता तो फिर झगड़ा ही सारा खत्म हो जाता, कोई मसला ही कोई नहीं था, फिर आप जो कहते मैं सारी की सारी बात को तस्लीम कर लेता कि भाई अल्लाह का रसूल है और मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह के रसूल की बात ना मानना ये तो तसव्वुर में ही नहीं है मेरे, ये तो मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता, इमेजिन ही नहीं कर सकता कि मैं किसी को अल्लाह का रसूल कहूँ फिर उसकी बात ना मानूं। मुझे याद आया अभी अभी, तो आपको पहले भी बता चुका हूँ किसी क्लास के अंदर, कि एक मेरे साथ जो है ना वो अमेरिकन क्रिश्चियन काम करता था, और बड़ा वो यानी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन था। ठीक है, एक दिन जो है ना वो मुझसे कुरान शरीफ के बारे में पूछने लगा कि भाई तुमने कुरान शरीफ जो है ना वो कितना याद किया है, या तुम्हें कितना पढ़ा है, या तुम्हें कितना जो है वो आता है। तो उस जमाने में वो नम भी नए नए जरा मौलवियों के साथ लगे थे, तो हमने भी थोड़ा बहुत ही खाली पढ़ा था उस वक्त तक, तो मैंने उसको बता दिया कि भाई मैंने जो है वो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है और ये है वो है, ठीक है, बस इतना सा मैंने पढ़ा है, अरबी भी जो है वो कोई खास पढ़नी शुरू नहीं करी थी उस जमाने में, या थोड़ी सी करी थी। तो वो मुझे कहता है, विल नाम था उसका, विलियम मसग्रोव उसका नाम था, तो वो कहता है कि इफ आई न्यू दैट दिस इज द बुक ऑफ माई लॉर्ड, इफ आई न्यू दैट दिस इज द बुक ऑफ माई लॉर्ड आई वुड हैव, यानी पता नहीं क्या उसने मुहावरा इस्तेमाल किया था, समथिंग टू द इफेक्ट, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना घोल के पी जाना, तो मैं तो इसको घोल के पी जाता, इस तरह का कोई उसने लफ्ज कहा था, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त याद नहीं आ रहा। ठीक है, कि भाई अल्लाह की किताब है और मैं उसको तवज्जो से ना पढ़ूं, मैं उसको जो है वो पूरा ना सीखूं, ये कैसे हो सकता है। बड़ी शर्म आई मुझे उसकी उसकी ये बात सुनकर के, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह कम अज कम शर्म तो आई, अल्लाह का शुक्र है, शर्म भी ना आती तो फिर किधर जाते। ठीक है, तो सुहेल ने भी यही बात कही, काश कि हम भी जो है ना वो इस बात के ऊपर थोड़ा सा गौर कर लें कि जिसको हम अल्लाह का रसूल कहते हैं तो उसके साथ जो है वो हमारा रवैया कैसा है। ठीक है, आज 14 अगस्त की जो तकरीबात मना रहे हैं सारे के सारे, विदाउट एक्सेप्शन, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो है ना वो आजादी आजादी आजादी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए हैं, ठीक है ना, उस दिन का जो हम बखिये उधेड़ रहे हैं इस आजादी के सेलिब्रेशन के अंदर, जिस किस्म के बखिये उधेड़ रहे हैं, जिस किस्म का हम उसके साथ हशर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये बस हमारी खासा है। मुशरिकीन मक्का जो है वो इसके इसका तस्वीर नहीं कर सकते थे कि किसी को अल्लाह का रसूल भी कहें और जो है वो उसकी बात भी ना माने, ये हम ही कर सकते हैं। ठीक है, तो और ताकि अमेरिका का क्रिश्चियन भी जो है वो कहता है कि मैं भी ये तस्वीर नहीं कर सकता कि किसी चीज को अल्लाह की किताब कहूं और फिर उसके साथ जो है मैं ये रवैया रखूं जैसा कि हमने रखा हुआ है। तो बहरहाल हिदायत अदा फरमाए। तो तकजीब की पहली सूरत यह है कि कोई शख्स सराहतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का रसूल ही तस्लीम ना करे, जैसे बुत परस्त, यहूद और नसारा। फिर उसके बाद दूसरी कस्म के रसूल तस्लीम करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कौल को सराहतन गलत या झूठ करार दे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज हिदायत पर ईमान रखे और बाज की तकजीब करे, यानी बाज को तो सच्चा उनकी तस्दीक करे, बाज हिदायत की तस्दीक करे कि भाई ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है, मैं इनकी तस्दीक करता हूँ, लेकिन बाज की जो है वो तकजीब करे कि नहीं मैं इनको तस्लीम नहीं करता, जानते हुए कि ये नबी अलैहिस्सलाम सलाम की दी हुई हिदायत है, लेकिन नहीं ये मैं इसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता भाई? क्योंकि ये मुझे समझ में नहीं आती। उमूमन इसकी वजह यही बनती है कि बाकी मुझे समझ में आती हैं कि हाँ भाई दिस इज समथिंग नाइस, जिसका जो है वो फायदा है, इंसानों को फायदा है, प्लानट अर्थ को इसका फायदा है, एनवायरमेंट को फायदा है, राइट, और फलाने फायदे हैं, तो मैं इनको मानता हूँ, लेकिन बाकी जो है ना वो मुझे समझ में नहीं आती कि इसमें फायदा क्या है भाई, राइट, खामखा की, तो इसको जो है वो उनको जो है वो उनकी तकजीब कर दे। ठीक है, तो ये भी कुफर की कसम है नंबर टू, दूसरी कसम। ठीक है, नफ्स की मानी होती है यानी अपनी अकल परस्ती जो कि नफ्स के गलबे में होती है, तो अकल की मानता है और नबी अलैहिस्सलाम की नहीं मानता। अच्छा, तीसरी कसम के किसी कतई सबूत कौल या फेले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहकर रद्द कर दे कि ये अहाज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल या फेल नहीं है, ये भी दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब है। ठीक है, यानी ऐसा नबी अलैहि वसल्लम ने कहा ही नहीं, हालांकि वो जो कौल या फेल है वो कतईयु सबूत है। कतईयु सबूत का मतलब क्या, पहले भी पढ़ चुके कि ये कंफर्म है कि नबी अलैहि सलाम ने ऐसी बात कही है या नबी अलैहि सलाम ने ऐसी बात करी है। ठीक है, तो ये कहे कि नहीं करी है, तो अब ये किसकी तकजीब कर रहा है? ये डायरेक्ट नबी अलैहि सलाम की तकजीब नहीं कर रहा, ये तो नहीं कह रहा कि मैं नबी अलैहि सलाम की इस बात को नहीं मानता, ये कह रहा है कि ये बात नबी अलैहि सलाम ने करी ही नहीं है, जैसा कि हम कहते हैं, राइट, कि ये तो मौलवियों की इजाद है, ये तो उलमा जो है ना उन्होंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है दीन के अंदर, ये नबी अलैहिस्सलाम ने कोई थोड़ी करने को कहा था, ये कुरान के अंदर कोई थोड़ी है। ठीक है, तो ये तीसरी किस्म का कुफर है ये भी। तो अब इसके अंदर किस चीज की तकजीब हो रही है? नबी अलैहिस्सलाम में तकजीब तो नहीं हो रही, मौलवी साहब की तकजीब हो रही है। दूसरे पॉइंट में भी कौल वो जो कतई व बदीही हो, एग्जैक्टली, जो कतई व बदीही हो, बिल्कुल दूसरे पॉइंट में भी वही ऐसा ही कौल जो कि कदी और कतई और बदीही कौल है ना, उसका वो इनकार करे तब वो काफिर होता है। ठीक है, जन्नी दूसरी किस्म जो होती है ना वो जन्नी कहलाती है, वो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो उनका इनकार करने से काफिर नहीं होता। ठीक है, तो अब ये किस चीज किस किसकी तकजीब हो रही है, ये तकजीब किसकी चीज किसकी तकजीब हो रही है, जरा कोई बताते हैं, अगर बच्चों को बल्कि इसका जवाब जो है वो ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल हाल फिलहाल के अंदर ये चीज पढ़ाई थी, ऐसे तो बड़े भी थे उस क्लास के अंदर काफी सारे, तो ये किस चीज की तकजीब हो रही है, अवामिर व नवाही? नहीं, ये हाल फिलहाल में नहीं, वो तो उसको तो कुछ हफ्ते हो गए, अवामिर नवाही वाली जो डिस्कशन आप लोगों के साथ करी थी उसको तो कुछ हफ्ते हो गए, अभी जो बात हो रही है तो ये तो इस सैटरडे की के अंदर बताया था आपको ना, याद नहीं है? किधर गई थी? मैं तो खैर हाफिज भी नहीं हूँ, वो आया जो है मुझे याद नहीं, ये भी कितना याद नहीं आ रहा कि कौन सी वाली किताब में वो लिखी थी। हाँ, तो इसके अंदर किसकी तकजीब हो रही है कि भाई ये जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ही नहीं। भाई नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, लेकिन किसने कहा कि ये नबी अलैहिस्सलाम ने कहा? सहाबा ने कहा। एग्जैक्टली, ये सहाबा ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात कही, ठीक है। और सहाबा ने भी किसी एक सहाबी ने नहीं कहा, किसी दो सहाबी ने नहीं कहा, बल्कि सहाबा की जमात ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात कही है, ठीक है। और ये कहता है कि नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने बात नहीं कही है। तो फिर तकजीब किसकी हो रही है? नबी अलैहिस्सलाम की तकजीब नहीं कर रहा, बजाहिर नहीं कर रहा, बजाहिर नहीं कर रहा, ये सहाबा की बजाहिर तकजीब कर रहा है। तो हम तो आपको ये सिर्फ बता रहे हैं कि बजाहिर ये किसकी तकजीब कर रहा है, बजाहिर ये अपेरेंटली ये सहाबा की तकजीब कर रहा है। और ये तकजीब फिर पहुंचती है नबी अलैहिस्सलाम तक, ठीक है ना। ये नबी अलैहिस्सलाम की तकजीब बन जाती है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली ये नबी अलैहिस्सलाम की तकजीब बन जाती है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा के बारे में फरमाया कि भाई कुल्लुहुम अदूल अदूल अदूल, ठीक है, सारे के सारे जो है वो अदूल हैं और मेरे सहाबी ऐसे। और कुरान मजीद की भी तकजीब बन जाती है, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर नबी अल्लाह ताला ने सहाबा कराम की बड़ी बड़ी शानें बयान फरमाई है, ठीक है ना। लेकिन वो इनडायरेक्टली तकजीब कुरान और तकजीब सहाबा बनती है, सॉरी तकजीब कुरान और तकजीब रसूल इनडायरेक्टली बनती है। डायरेक्टली किसकी बनती है? बिला वास्ता किसकी बनती है? सहाबा कराम की तकजीब बनती है। वमई युशाकिक रसूला मिन बादी, इन्होंने यहाँ पे ये आयत लिख दी है इब्राहिम भाई ने या मोहम्मद भाई ने, सॉरी अब्दुल्ला भाई ने, कि वमई युशाकिक रसूला मिन बादी मा तबैना लहुल हुदा, ठीक है। और जिसने के रसूल से जो है उसकी मुखालफत करी इसके बाद की कोई चीज खुल करके उसके सामने आ गई, ठीक है ना, यानी दलाइल के साथ जब हिदायत की बात इसके पास पहुंच गई, वो दलाइल कौन से? ये कतई सबूत दलाइल के साथ जब कोई बात हिदायत वाली इसके सामने पहुंच गई। वमई युशाकिक रसूला, जिसने रसूल की मुखालफत करी इसके बाद के दलाइल के साथ खुल करके हिदायत की बात इस तक पहुंच गई। आगे फरमाते हैं वयत्तबे गैरा सबीलिल मुमिनीन, और उसने इत्तेबा करी ईमान वालों के रास्ते के अलावा किसी रास्ते की, ईमान वालों के रास्ते के अलावा किसी रास्ते की, नुवल्लिही, तो हम उसको उसी के हवाले कर देते हैं, मा तवल्ला, जिसका जिसका कि उसने रास्ता इख्तियार किया, व नुस्लिही जहन्नम, और हम उसको जहन्नुम में फेंक देंगे, वह साअत मसीरा, और वह सबसे बुरा ठिकाना है, ठीक है। तो इस आयत में किस चीज की हमें दलील मिल रही है कुरान मजीद से? इजमाए सहाबा, यानी सहाबा की जमात जिस चीज के ऊपर मुत्तफिक हो गई इसको इजमाए सहाबा कहते हैं, ठीक है। तो इसका ना मानने वाला, इसको छोड़ करके किसी दूसरे रास्ते को इख्तियार करने वाला, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं व नुस्लिही जहन्नम, ठीक है, हम उसको जहन्नम के अंदर फेंक देंगे, ठीक है। तो ये इजमाए सहाबा की तकजीब कहलाएगी, तीसरा वाला कौल ये है, ठीक है। और ये भी जो है ना ये भी खुल करके कर रहा है, ये शख्स खुल करके काम कर रहा है, खुल करके तकजीब कर रहा है इजमाए सहाबा की, नहीं ये तो नबी अलैहिस्सलाम का कॉल है ही नहीं। हालांकि सहाबा की जमात ये कह रही है कि ये नबी अलैहिस्सलाम का कॉल है, ये कहता है नहीं कॉल है, लेकिन खुल करके ये बात कर रहा है। तो ये तीसरी कस्म है तकजीब की। जजाक अल्लाह, उन्होंने अंग्रेजी में तर्जुमा भी लिख दिया। हाँ, फिर उसके बाद चौथी कस्म तकजीब, और ये असल कस्म है इस किताब का जो मौजू है वो चौथी कस्म है। वो क्या? चौथी सूरत ये है कि कौल और फेल को तस्लीम करते हुए उसके मफहूम की तावील करके कुरान और हदीस की कतई तसरीहात के खिलाफ किसी खुद साख्ता मफहूम पर महमूल करे, ठीक है। यानी कौल को भी तस्लीम करता है कि हाँ ये नबी अलैहिस्सलाम का कौल है, फेल को भी तस्लीम करता है कि हाँ ये नबी अलैहिस्सलाम का फेल है, कहता है हाँ ये है नबी अलैहिस्सलाम का फेल, हाँ ये है नबी अलैहिस्सलाम का कौल, तस्लीम करता है इन दोनों चीजों, ठीक है ना। लेकिन उसका मफहूम जो है ना, मफहूम उसके जो मीनिंग है वो जिस चीज की तरफ दलालत करता है, वो जिस मानी की तरफ दलालत करता है उसको मफहूम कहते हैं, मीनिंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उसकी तावील ऐसी करता है, एक्सप्लेनेशन ऐसी करता है कि कुरान और हदीस की कतई तसरीहात के खिलाफ जाती है, वो खुद साख्ता मफहूम, यानी इसने अपनी तरफ से कोई घड़ा हुआ मफहूम उसका बयान कर देता है कि भाई इसका मतलब तो ये है, ठीक है। ये है चौथी कसम का कुफर। कुफर और तकजीब की ये सूरत चूंकि दावाए इस्लाम और अदायगी शायरे इस्लाम के साथ होती है, यानी ये जो शख्स ये जो काम करता है ना, ये इस्लाम का दावे के साथ करता है कि मैं मुसलमान हूं, और शायरे इस्लाम की अदायगी करता है। शायरे इस्लाम किन चीजों को कहते हैं? वो चीजें या वो अफआल, वो चीजें या वो अफआल जिनको देख करके इस्लाम याद आता है, ठीक है? शायर इस्लाम जिनको देख करके कि हाँ भाई ये इस्लाम की निशानियां हैं, या ये मुसलमान ये जो चीज पहना हुआ है ना, ये पता चलता है इसे कि ये मुसलमान है। अंदर से कुछ भी हो लेकिन ऊपर से तो ये मुसलमान ही दिखता है ना। टोपी मिसाल के तौर पर शायर इस्लाम में से है, जो शख्स टोपी मुसलमानों जैसे अंदाज में पहना हुआ होता है, वरना तो टोपी यहूदी भी पहनते हैं, ठीक है? या जो है वो बास्केटबॉल बेसबॉल प्लेयर्स भी को टोपी पहनते हैं, उस टोपी को देख करके कोई मुसलमान नहीं कहता कि हाँ ये मुसलमान लगता है, राइट? मुसलमानों की तरह से जो टोपी पहनता है, तो ये टोपी शायर इस्लाम में से है, ठीक है? उसी तरह नमाज, ये नमाज शायर इस्लाम में से, जो शख्स मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ता है तो देख करके लोग क्या कहते हैं, भाई ये मुसलमान लगता है क्योंकि ये मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ रहा है, ठीक है? तो ये शख्स जो है वो शायर इस्लाम को अदा भी करता है और दावा इस्लाम भी करता है, ठीक है? तो कुफ्र और तकजीब की ये सूरत चूंकि दावा इस्लाम और अदायगी शायर इस्लाम के साथ होती है, इसलिए इसमें अक्सर लोगों को बहुत मुगालता पेश आता है, गलत फहमी लग जाती है, खुसूसन जब इस पर नजर की जाए, खुसूसन जब इस नुक्ते पर नजर की जाए। नुक्ता अगर यहाँ पे आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? खुसूसन जब इस नुक्ते पर नजर की जाए, इस पॉइंट पर नजर की जाए कि तावील के साथ इनकार करना बा इत्तेफाक उलमा तकजीब में दाखिल नहीं है, और ऐसे शख्स को काफिर भी नहीं कहा जा सकता जो कि तावील के साथ किसी चीज का इनकार करे, यानी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हो अपनी तरफ से, तो इसको जो है ना वो उलमा फरमाते हैं कि ये तकजीब नहीं है, ठीक है? और ऐसा करने वाला काफिर नहीं होता। तो ये जो पॉइंट है ना, ये शुरू में भी हम बात कर चुके हैं, किताब में भी हजरत ने शुरू में लिखा था, तो ये जो पॉइंट है ना, दिस थ्रोस पीपल ऑफ, इसकी वजह से गलत फहमी लग जाती है कि भाई तावील करने वाला तो काफिर नहीं होता, तो ये जो तावील कर रहा है ये भी काफिर नहीं है, ठीक है? किसी ने यहाँ पे एक सवाल लिखा है कि गलत तावील पर बगैर गलत नीयत के यकीन रखने से ईमान जाया हो जाता है। गलत तावील पर बगैर गलत नीयत के यकीन रखने से ईमान जाया हो जाता है, जी हो तो जाता है, बगैर गलत नीयत के यकीन रखने से ईमान जाया हो जाता है। ऐसी गलत तावील जो कि कतियात दीन के अंदर, जरूरियात दीन के अंदर गलत तावील है ना, ठीक है? तो अगर कोई भोलेपन में, होलपन में अगर कोई जो है वो उसका यकीन कर लेता है, ठीक है, बगैर किसी सिनिस्टर नियत के दिल में हुए हुए कि मैं तो इस्लाम को खराब करना चाहता हूँ, मैं तो मुसलमानों की जड़ काटना चाहता हूँ, इस किस्म की कोई नियत नहीं है उसकी, नहीं है उसकी, ठीक है? लेकिन उसने यकीन कर लिया किसी की बात पर, वो भी काफिर हो जाता, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ठीक है ना, इसने जो तावीलात करी, खत्मे नबूवत की, नबी अलैहिस्सलाम की रसालत की, ठीक है ना, इसने तावीलात करके जो है वो कादियानियत की जगह हमवार करी। अब कितने हजारों लोग जो हैं पूरी दुनिया में इस वक्त भी मौजूद हैं, और पहले भी, जब इसने ये काम किया था, बहुत सारे लोग इसकी बात पे यकीन करके बैठ गए, ठीक है? अब वो लोग जो है मुसलमान कहलाएंगे कि भाई वो तो भोलपन के अंदर इसकी बात पे यकीन करके बैठ गए, नहीं वो मुसलमान नहीं कहलाएंगे, वो भी काफिर कहलाएंगे, ठीक है ना? तो अब वो क्यों काफिर कह रहे हैं, उनका क्या कसूर? उनकी तो नीयत सही थी, उनका क्या कसूर? उनका ये कसूर है कि वो जो है, पहली बात तो ये कि दीन की बुनियादी बुनियादी जो बातें हैं उसका उन्होंने इल्म क्यों नहीं हासिल किया, ये एक कसूर है मुसलमान का, ठीक है ना? ये एक कसूर है मुसलमान का कि उसने बुनियादी चीजों का इल्म क्यों नहीं हासिल किया। और दूसरा कसूर उनका क्या है कि जो उलमाए हक की जमात है, अहलु सुन्ना वल जमात, ठीक है ना, वो उसके साथ जुड़ करके क्यों नहीं रहते, क्यों नहीं रहे वो उनके साथ जुड़ करके, ठीक है? तो अगर उनके साथ जुड़ करके रहते तो फिर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो या शकीली हो या जो कोई भी हो, तो उसके ऊपर कोई थोड़ी आकर के फिर वो आप यकीन करना शुरू कर देते। तो कसूर क्या है आप जो है वो अहले सुन्ना वल जमात के से जो है ना वो हट करके अपना आपने रास्ता बनाया हुआ था, अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाई हुई थी, या अपने आप को जो है वो अकल कुल समझना शुरू कर दिया था और फिर अल्लाह ताला ने आपको किसी शैतान के हवाले कर दिया। ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ये इंसानी शक्ल में शैतान है, ठीक है ना, शैतान है ये। जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं मिनश शयातीन मिनल इंस वल जिन, ठीक है, कि इंसानों के शयातीन और जिन्नों के शयातीन। तो इंसानों में शयातीन कौन है? इसी किस्म के लोग जो कि लोगों को कुफर की तरफ बुलाते हैं, चाहे खुल करके बुलाएं वो भी शयातीन है, चाहे छुप करके बुलाएं वो भी शयातीन है। तो अल्लाह ने शैतान के हवाले कैसे कर दिया? इसलिए कि तुमने जो है नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के रास्ते को तर्क करके रखा हुआ, ठीक है। बहरहाल तो फरमाते हैं कि जाहिर है कि मुल्हिदीन भी यानी जो इल्हाद करते हैं वो लोग भी किसी तावील का सहारा जरूर लेते हैं, इसलिए इस कस्म की तशरीह व तौजीह ज्यादा जरूरी है ताकि तावील और इल्हाद में फर्क मालूम हो सके। यानी हम जो ये पूरी किताब लिख रहे हैं, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि हम जो ये पूरी किताब लिख रहे हैं ना, ये हम खाम खामे सफ़े काले करने के लिए नहीं लिख रहे हैं ये, ठीक है ना। हम जो है वो अपने लाइब्रेरी के अंदर एक और किताब का एडिशन इजाफा करने के लिए है ना, ताकि वो किताब जो है वो मार्केट में बिकेगी, हमारी शोहरत बढ़ेगी, या किताब जो है वो उसकी रॉयल्टी हमारे पास आएगी तो हमारे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, राइट। या ऐसे ही बस दिल चाह रहा था हमने, चलो एक और किताब लिख मारो खाम खाम में, हम इसलिए ये किताब नहीं लिख रहे हैं, बल्कि इसकी शदीद जरूरत है, इस वजह से हम ये सारी की सारी तफसील लिख रहे हैं ना, ठीक है ना। तो जरूरत है भाई, इस वजह से लिखी है और जरूरत है इस वजह से हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है ना। वरना पढ़ने के लिए अलहमदुल्ला और बहुत सारी किताबें थी और भी बहुत सारे मौजूदात थे। हमने तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता इख्तियार कर लिया है कि हमने अपनी तरफ से कमी बयान करना है, अपने बड़ों के ही लिखे हुए बयानात जो है ना उन्हीं को हमने एक्सप्लेन करना है, तो भाई उनके कोई कम है बयानात मौजूद? अल्लाह का शुक्र है हमारे अपने हजरत की इतनी सारी किताबें मौजूद हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो भाई कोई वजह है ना जिसकी वजह से इस वाली किताब को लेकर के पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। तो जरूरत है इसकी, शदीद जरूरत है इसकी। तो और वो जुमे के बयान में तो मेरे ख्याल में शुरू का कम से कम 20 मिनट जो है वो जरूरत को ही एक्सप्लेन किया था कि क्या जरूरत है उसकी, क्यों जरूरत पड़ गई इतनी ज्यादा। तो तावील और इल्हाद में फर्क मालूम हो सके और मालूम हो जाए कि तावील के महल में तावील मूजब कुफर नहीं है, यानी जहां पे तावील जस्टिफाइड होती है, जो उसका मकाम है महल है, वहां पे तावील जो है वो कुफर का सबब नहीं बनती। मुजिब का मतलब होता है किसी चीज का सबब बन जाना, किसी चीज को वाजिब कर देना, तो वो वाजिब है कुफर नहीं बनती है। मगर इल्हाद व जंदका की तावील बिल इजमा मुजिब कुफर है, ठीक है। यानी ऐसी तावील जो कि इल्हाद की वजह से की जा रही हो या जंदका की वजह से की जा रही हो, ये बिल इजमा यानी सहाबा का इजमा है और सहाबा के बाद उम्मत के हर दौर के उलमा के इस बात के ऊपर इजमा कंसेंसस एग्रीमेंट रहा है कि ये कुफर को वाजिब कर देता है, इसलिए इस मजमून को तफसील के साथ लिखा जा रहा है, लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद कुफर जंदका व इल्हाद, ठीक है। अब ये चौथी जो उन्होंने एक पैराग्राफ के अंदर ये चौथी किस्म की का कुफर बयान किया है ना, अब इसको जो है वो अलग से खोलते हैं। पहली तीन किस्म के जो कुफर हैं, तो चूंकि वो इस किताब का मौजू नहीं है, तो इस वजह से उनको अलग अलग से नहीं खोल रहे, सिर्फ चौथी किस्म के कुफर को खोल रहे हैं। तो चौथी किस्म का कुफर जो है, फरमाते हैं कि तकजीब की चौथी सूरत कुरान की इस्तलाह में इल्हाद और हदीस में इल्हाद व जंदका के नाम से मौसूल है, यानी इसका जो नाम रखा गया, कॉइन किया गया इस टर्म को, तो ये कुरानी टर्म है, ठीक है ना, और कुरान के अंदर इल्हाद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और हदीस मुबारका के अंदर इल्हाद और जंदका दोनों का लफ्ज, दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसी किस्म की कुफर के लिए। अब हम जो है वो लफ्ज इल्हाद किधर इस्तेमाल करते हैं, जरा बताएं जल्दी से, आपने देखा होगा लफ्ज इल्हाद या मुल्हिद ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर लोग? मुल्हिद किसको कहते हैं? किसको कहते हैं जी? एथियस्ट। एग्जैक्टली, एथियस्ट। आप हैरान होंगे कि ऐसे ऐसे लोग जो है वो मुलहित का जो लफ्ज है ना वो एथियस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो भाई एथियस्ट के लिए उर्दू जुबान के अंदर लफ्ज है दहरिया। दहरिया कहते हैं उसको, उसको मुलहित नहीं कहते। मुलहित तो पुरानी टर्म है, यानी ये है ना कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि नहीं, मुलहित जो है ना वो उसको नहीं कहते, उसको दहरिया कहते हैं, इसको मुलहित कहते हैं। तो कहेंगे भाई आप कौन है, हु आर यू, हु आर यू टू टेल अस कि मुलहित इसको नहीं कहते। अल्लाह के बंदे मैं कोई थोड़ी कह रहा हूँ, कुरान मजीद ये कह रहा है। और आप जो है कुरान मजीद की टर्म को जो है वो किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कि कुरान ने उसके लिए इस्तेमाल नहीं करी है। तो भाई कुछ तो ख्याल करें यार, ठीक है, और क्या कह सकते हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह हामीम सजदा, जिसको कि सूरह फुस्सिलात भी कहा जाता है, ठीक है, दोनों नाम है इस सूरत के, उसकी आयत नंबर 40 और 41 के अंदर, 40 and 41 के अंदर फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युल्हिदून फी आयातिना ला यख्फौना अलैना, ठीक है, कि बेशक वो लोग जो कि हमारी आयात में, ठीक है, हमारी आयात में, हमारी निशानियों में, यहाँ पे आयात से मुराद कुरान मजीद की आयात, उनमें इल्हाद करते हैं, युल्हिदून फी आयातिना ला यख्फौना अलैना, वो हमसे छुपे हुए नहीं, वो हमसे छुप नहीं सकते हैं। छुपने का लफ्ज, इस यखफौना के लफ्ज को हमारे उलमाए कराम ने छोड़ा नहीं, उन्होंने इसी लफ्ज को पकड़ लिया। अल्लाह ताला देखो यखफौना का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका, कि कोई छुपने की कोशिश करता है उसी के बारे में कहा जाता है ना कि ये हमसे छुपे नहीं रह सकते। भाई जो खुल करके कोई काम कर रहा है, सीना तान करके सामने आकर के कोई काम कह रहा है, तो उसके बारे में कोई कहेगा कि ये मुझसे छुप नहीं सकता? अल्लाह के बंदे वो छुपने की कोशिश तो थोड़ी कर रहा है, जो तुम कह रहे हो कि वो तुम मुझसे छुप नहीं सकता है, तो छुप नहीं सकता किसके बारे में कहा जाता है, जो छुपने की कोशिश कर रहा होता है। यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम मी, अल्लाह ताला फरमा रहे दे कैन नॉट हाइड फ्रॉम अस। ला यह क्या मतलब, दे ट्राई टू डू इट इन अ हिडन वे, वो छुप करके ये वाला वार करते हैं। और छुप करके वार करने को मिलिट्री टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या कहा जाता है जी, माशाल्लाह बच्चों तो नहीं भूल सकते इस लफ्ज, गोरेला वॉरफेयर, गोरेला, ठीक है ना, ये वॉरफेयर होता है जिसमें छुप करके हमला किया जाता है, ठीक है ना। और छुप करके हमला कौन करता है, जो कि कमजोर पड़ चुका होता है, जो कि खुल करके हमला कर नहीं सकता, कन्वेंशनल वॉरफेयर को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो छुप करके वार करता है, ठीक है। तो याद रखें इन बातों, अफमें युल्का फिन नारी, बस जो डाल दिया जाए जहन्नुम की आग के अंदर, खैरुन, क्या वो बेहतर है, अब मैं याती आमी नहीं, या वो जो कि ईमान के साथ आए, यौमल कयामत, कयामत के दिन, ठीक है ना, जो ईमान के साथ आए वो ज्यादा बेहतर है, या जो जहन्नुम की आग में डाल दिया जाए वो ज्यादा बेहतर है। क्या मतलब कि ये जो लोग इल्हाद करते हैं वो हमसे छुप के नहीं रह सकते, और वो जहन्नुम की आग में डाल दिए जाएंगे, वो ईमान वाले नहीं है। ईमान वालों का तो अलग तस्करा हो रहा है यहाँ पर, अब मैं याती आमी नहीं यौम अल-क़ियामा। तो उसके बाद फिर हदीस मुबारक भी इसी से रिलेटेड फरमाते हैं, समितु इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि समितु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए, यकूल, सयकूनु फी हाज़िहिल उम्मति मस्ख़ुन, अन करीब होगा मेरी, यानी इस उम्मत में, किस उम्मत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद दुनिया से बाकी सारी उम्मतें खत्म हो गई, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रह गई, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो आखिरी नबी भी थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुनिया में कोई दूसरा नबी भी नहीं था कि हाँ भाई उनकी उम्मत जो है वो फलानी जगह पे रहती है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो फलानी जगह पे रहती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस उम्मत की बात कर रहे हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाके में रहती है, नहीं कोई दूसरा नबी है ही नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो फिर पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी इंसानियत एक उम्मत बन गई, ठीक है। अब उस उम्मत के अंदर एक उम्मत दावत हो गई, एक उम्मत इजाबत हो गई, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉल पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, ईमान लेकर के आ गए, वो उम्मत इजाबत कहलाती है। और जो ईमान नहीं लेकर के आए लेकिन अभी दुनिया में जिंदा हैं, उनको कहते हैं उम्मत दावत, कि उनको दावत देंगे, ठीक है ना, ईमान ले आए या ईमान ना लेकर के आए। तो दुनिया की जिंदगी के अंदर जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है वो दो हिस्सों में बट गई, एक उम्मत दावत एक उम्मत इजाबत। फिर उसके बाद जब मौत आ गई किसी के ऊपर, तो उसके बाद जो है ना फिर आखिरत के अंदर, आखिरत के अंदर दो उम्मतें नहीं है, आखिरत के अंदर एक ही उम्मत होगी नबी अलैहिस्सलाम की। वो कौन सी? जिसने नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, और जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की रिजेक्ट करते रहे करते रहे, तो वो अगर कुफर की हालत में मर गए तो वो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत से खारिज होंगे, ठीक है ना। तो कयामत के दिन कोई उम्मत दावत नहीं होगी, कयामत के दिन दावत तबलीग का काम नहीं हो रहा होगा, वहां पे कोई उम्मत दावत ही नहीं होगी, ठीक है ना। अब तो वो सारे के सारे काफिर होंगे, ठीक है। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी यानी इस उम्मत के अंदर अनकरीब होगा मस्क। मस्क कहते हैं हुलिया बिगड़ जाना, चेहरा बिगड़ जाना, या यानी फिजिकल जो इंसान की शक्ल सूरत होती है, इंसान की जो जो साख्त होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, वो मस्क हो जाना, वो बदल जाना, ठीक है। अब ये जाहिरी तौर पर तो चेहरे के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाह आलम कि अगर ये मस्क का जो लफ्ज है ना, ये अंदर से भी फितरत का मस्क हो जाना, क्योंकि उसके लिए भी हम मस्क का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फितरत ही मस्क हो जाएगी। अब किसी हमारे अकाबरीन में से, हमारे असलाफ में से अगर इसके लिए फितरत के मस्क होने का मानी भी इस्तेमाल किया हो, मेरे नजर से नहीं गुजरा, वैसे भी मेरा मुताला इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है, लेकिन कम से कम चेहरे का मस्क होना तो ये तो आम मफहूम इसका समझा ही जाता है। अला, कान खोल करके सुन लो, खबरदार हो जाओ, अला वज़ालिका फिल मुकज़्ज़िबीन बिल क़द्र। और ये जो है ना, यानी ये जो मस्क है ना, ये होगा तकदीर की तकजीब करने वालों में, जो तकदीर का इनकार करेंगे। व सिंदीका, और जिंदगी लोग, ये मस्क जो है ना, चाहे वो जाहिर का मस्क हो, चाहे वो अगर अगर वो बातिन का मस्क भी इसके अंदर मुराद है, फितरत का मस्क हो जाना, तो ये किन दो किस्म के लोगों में होगा? ये तकदीर का इनकार करने वाले, और जो है ना वो जो जनादिफा होंगे यानी मुल्हिदीन। अखराजहुल इमाम अल अहमद, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मसनद के अंदर, मुसनद के अंदर जो है वो इसको हदीस को नकल किया। वकाला फिल खसाइस, और खसाइस के अंदर जो है वो लिखा हुआ है सनदुहु सही, कि इसकी सनद जो है वो बिल्कुल सही है, यानी बिल्कुल सही हदीस है ये। वफी मुंतखब कंजुल हम्माल जिल में और सफ़े में वगैरह वगैरह। तो तर्जुमा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ठीक है, आगे हम पढ़ें या ना पढ़ें, हाँ थोड़ा सा क्योंकि बस टाइम तो खत्म हो गया, 1 मिनट ऊपर हुआ है, तो अगर इस वाली हेडिंग को हम मुकम्मल कर लें, तो आगे फरमाते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किस्म की तकजीब के मुताल्लिक सही बुखारी में एक मुस्तकिल बाब लिखा है, पूरा एक चैप्टर रखा है सही बुखारी के अंदर, उसका नाम है बाबू कत्ली मन अबा कबूल अल फराइदी वमा नुसिबु इलर रिद्दा, ठीक है, यानी कत्ल किया जाना कि जिसने के फराइज को कबूल करने से इनकार कर दिया, अबा या अबा, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, कुरान मजीद में है ना कि शैतान ने जो है वो नाफरमानी करी और वो काफिरीन में से हो गया, ठीक है, तो ये वो वाला अबा है, अबू वाला अबा नहीं, तो अबा कि जिसने के फराइज को के का इनकार कर दिया, उसको कत्ल करना, यानी जिसको मुर्तिद की सजा कहते हैं, मुर्तद की सजा, इर्तिदाद करने वाली की सजा, ठीक है, इसी को इर्तिदाद यानी रिद्दा अरबी जुबान के अंदर भी कहते हैं। तो ये इमाम बुखारी ने बाब बांधा, इस बाब में इस किस्म की तकजीब को भी इर्तिदाद करार दिया है, और हजरत शाह वलीउल्लाह दहलवी कदसरहू ने मुसव्वा शरह मुअत्ता में इस किस्म की तकजीब के मुताल्लिक लिखा है। अरबी बारह चुके टाइम खत्म हो चुका है, तो वो पढ़ तो सकते थे, लेकिन बाद में इंशाल्लाह की क्लास के अंदर पढ़ लेंगे, तो इसका बस तर्जुमा पढ़ लेते हैं कि शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शरह मुअत्ता के अंदर जो है ना वो ये इबारत लिखी है, जिसका तर्जुमा बनता है कि अगर इकरार करे उसका जाहिरी तौर पर, लेकिन दीन की बाज उन चीजों की जो साबित हैं ऐसी तफसीर बयान करे, यानी जो चीज साबित है दीन के अंदर उसका इकरार तो करे कि हाँ ये दीन है, ये नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है या ये नबी अलैहिस्सलाम ने करा है, इकरार कर ले, लेकिन ऐसी तफसीर बयान करे जो सहाबा और ताबईन और इजमाए उम्मत के खिलाफ हो, यानी सहाबा के खिलाफ हो, क्या मतलब सहाबा का इजमा उसके खिलाफ हो या ताबईन के इजमा के खिलाफ हो, या इवन उसके बाद की जनरेशंस में अगर उलमाए हक ने कंसेंसस कर लिया था, इजमा कर लिया था, तो वो उसके भी खिलाफ हो अगर, तो वो जिंदगी है। ठीक है, मसलन ये तो इकरार करे कि कुरान हक है, मिसाल के तौर पर यहाँ हम जैसे लोगों के लिए ये मिसाल बड़ी आसान है, सादा सी है कि ये तो इकरार करे कि कुरान हक है और जो इसमें जन्नत और दोजख का जिक्र है वो भी ठीक है, लेकिन जन्नत से मुराद वो खुशी और फरहत है जो अखलाक हमीदा से पैदा होती है, यानी व्हेन यू आर नाइस टू समवन, आप बड़े अखलाक से पेश आते हैं अपने घर के अंदर अपने पड़ोसियों के साथ, तो यू फील गुड अबाउट इट ना, आपको बड़ा अच्छा सा फील होता है, आपका घर वालों को भी बड़ा अच्छा फील होता है। तो ये कहे कि जन्नत से मुराद ये खुशी और फरहत है और दोजख से मुराद वो नदामत है जो अखलाक मजमूमा के सबब हासिल होती है, जब आप किसी के साथ बदतमीजी करते हैं तो फिर आपको नदामत होती है कि यार मैंने उसका दिल तोड़ दिया या मैंने बहुत ज्यादा बहुत टू मच कर दिया उसके साथ, आपको नदामत होती है। तो कहे कि दोजख जो है ना इस नदामत का नाम है, वरना ये कहे कि वैसे ना कोई जन्नत है ना दोजख है, यानी कोई फिजिकल जगह नहीं है जिसका नाम जन्नत है, जहां पे बागात होते हैं, यहाँ पे मोमिनीन जो है वो कयामत के दिन हिसाब किताब के बाद दाखिल किए जाएंगे, और ना कोई दोजख है जहाँ पे कुफार जो है वो दाखिल किए जाएंगे, ऐसी कोई चीज फिजिकली मौजूद नहीं है, बस ये फीलिंग्स का नाम है। तो ऐसा शख्स जो है वो जंदीक है। ठीक है, तो ये हजरत शाहुल रहमतुल्लाह अलैहि की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कोई अगर सवाल या कमेंट वगैरह भी हो किसी के पास तो वो चैट विंडो पर लिख करके बयान कर सकते हैं, वरना बात हो अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह, जुम्मे के बयान में इंशाल्लाह। ठीक है फिर, वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।